जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो ये बताइए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का उससे उपयुक्त अवसर कौन हो सकता था, क्यों नहीं दिया? तो जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वोट के लिए किया तो ये तो सच बात है। और उन लोगों से मैं पूछता हूँ तुम किसके लिए करते हो, परमार्थी लोग हो? जिस परिवेश में कर्पूरी ठाकुर जन्मे थे, पले थे, बढ़े थे, नरेंद्र मोदी उसी परिवेश में जन्मे, पले और बढ़े। पेट की भूख मिटेगी रोटी से और मन की भूख मिटेगी सम्मान से। तो समाज के अंदर जो ये दोनों तरह के भूखे हैं, जो पेट के भी भूखे हैं और मन के भी भूखे हैं, इन पर ज्यादा ध्यान दो। चौधरी चरण सिंह जाट के नेता, जगजीवन बाबू दलित के नेता, डॉक्टर अंबेडकर दलित के नेता। राष्ट्रीय नेता का ट्रेडमार्क, होलसेल ट्रेडमार्क, सर्वाधिकार सुरक्षित, ये केवल एक नेहरू वंश को था। ईश्वरीय शक्ति या नरेंद्र मोदी की लोक शक्ति, अब दोनों शक्ति का समन्वय हो रहा है भारत में। कर्पूरी ठाकुर की धारा जाति विरोधी धारा नहीं है, परियार की धारा केवल एक धारा है, वह है ब्राह्मण विरोध। उधर ऊंची जाति के लोग थे जो कहते थे ये मेरा नहीं, ये राष्ट्र का सौभाग्य है कि हमारे कंधे पर ये पिछड़े और दलित के नेता आगे बढ़ रहे हैं, वो दधीची की धारा है। भारत की परिस्थिति अभी सामान्य नहीं है, भारत की परिस्थिति अभी विशेष है। अयोध्या में राम की मंदिर की स्थापना कोई सामान्य परिस्थिति है? एक है भारत रत्न और अब आने वाले हैं देश में लोक रत्न।
नमस्ते हुकुमदेव जी, कैसे हैं आप?
नमस्ते नमस्ते, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा है।
काफी ठंड हो गई इस पर।
हाँ, समय है।
तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा इस साल, तो इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
अति उत्तम, जो काम नरेंद्र मोदी जी को समय पर करना चाहिए वो काम उस समय पर ही करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है समय। हमारे डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि मात्रा भेद और समय, तो यही उपयुक्त समय था, यही उपयुक्त समय था। मांग तो बहुत पहले से थी लेकिन समय यही उपयुक्त था।
अच्छा, इसका क्या कारण है कि आप ये कह रहे हैं कि समय ये उपयुक्त है? क्योंकि जो आपके भाजपा के भी और जो सरकार के जो विरोधी हैं विचारधारा में भी और राजनीति में भी, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए अब चुनाव आने वाला है और बिहार में हमने कास्ट सेंसस चालू कर दिया, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को भाजपा भी वाले भी साधना चाहते हैं, उनकी जो वोट बैंक है उसकी तरफ से, इसलिए एक कारण दिया जा रहा है।
चलिए, विपक्षी हैं, विरोधी हैं, तो उनकी अपनी दृष्टि है, नरेंद्र मोदी जी की अपनी दृष्टि है। आँख न सबको समान है लेकिन दृष्टि भेद होता है ना, तो ये दृष्टि भेद की बात है। जो लोग बोल रहे हैं, अनेकों तरह की बात कर रहे हैं, हम मांग रहे थे, तो ये जितने हम करने वाले लोग हैं, इन सबों से एक ही सीधा प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर जी के मृत्यु के बाद 90 से लालू का युग प्रारंभ हुआ और नीतीश का सम्मिलित युग। उस युग में सब थे मेरे अलावा, मैं थोड़े दिन तक था लेकिन उसके बाद मैं एक दो साल तक रहा उस जमात में 90 के बाद, नहीं तो मैं 93 में भाजपा में चला आया। क्यों आया वो अलग प्रसंग है, लेकिन इतने दिन तक रहे, लालू रहे, नीतीश रहे और लोग रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी रहे। तो बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया था उस समय शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब उस सरकार में थे। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो ये बताइए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का उससे उपयुक्त अवसर कौन हो सकता था, क्यों नहीं दिया? फिर 10 बरस तक मनमोहन सिंह की सरकार जो चली है कांग्रेस की, घुमा फिरा करके उसमें लालू तो समर्थक थे, उसमें रहे, और लोग भी रहे
और दिग्गज समाजवादी नेता भी थे उसमें।
मनुष्य के का जो चिंतन है अधोमुखी जब हो जाता है तो उसको नहीं दिखाई पड़ता है। सभी काम लाभ के लिए ही नहीं होता है। और लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उसके सभी काम होते हैं वोट के लिए। तो जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वोट के लिए किया तो ये तो सच बात है। और उन लोगों से मैं पूछता हूँ तुम किसके लिए करते हो? परमार्थी लोग हो। ये जाति जनगणना किस चीज़ के लिए कराए हो? और आर्थिक जनगणना और जातीय जनगणना साथ कराए हो। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का ये पढ़े लिखे विद्वान लोग भी आर्थिक जनगणना बिहार का है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, केवल जातीय जनगणना पर चर्चा करते हैं। बिहार में उस आर्थिक सर्वेक्षण में आया हुआ है कि बिहार में लगभग 50% लोग आज ऐसे हैं जिनको मकान वाला कहा ही नहीं जा सकता है, जो प्रॉपर्टी गृह विहीन है। तो इस पर कहाँ चर्चा है देश में? क्योंकि वो जो बिना झोपड़ी वाले हैं, घर बिना मकान के, वो धन से कमजोर है, जाति से कमजोर है, विद्या में कमजोर है, बुद्धि में कमजोर है, वही ना समाज का सबसे अंतिम मानव है। जिसको रहने के लिए घर नहीं है वो समाज का अंतिम मानव है, अंतिम। दीनदयाल जी ने कहा था अंत्योदय, तो अंत्योदय का मतलब क्या है?
पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति,
सबसे जो अंत में है उस अंत को, अंत का उदय हो। उदय का मतलब है कि वो ऊपर उठे, शक्तिशाली बने। तो उसकी शक्ति कैसे आएगी? पहले आर्थिक शक्ति आएगी, तो उस आर्थिक शक्ति से शारीरिक शक्ति आएगी, बौद्धिक शक्ति आएगी। सभी शक्तियां तो वहीं से प्रारंभ होंगे ना, अर्थ से ही ना। तो नरेंद्र मोदी ने अगर निर्णय लिया कि इस भारत वर्ष में जो कोई बिना मकान का है, मेरी प्राथमिकता है कि सबसे पहले उनको पक्का मकान बना दें, तो क्यों किसी ने नहीं कहा कि ये वोट के लिए करते हैं? और किसी ने क्यों नहीं पूछा कि बिहार में 50% आदमी अगर आज मकान के बिना है उनके सर्वेक्षण के मुताबिक, तो फिर उन लोगों के 32-33 वर्ष तक नीतीश और लालू का शासन है, पिछड़ों के मसीहा कहते हैं अपने को, स्वघोषित स्वनाम धन्य पिछड़ा के नेता हैं, तो इनके शासन में जो इतना इंदिरा आवास बना, अब फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बना, तो कोई पूछे ना कि ये सारे जो इंदिरा आवास से और प्रधानमंत्री आवास से जो आवास बनाए गए वो कहाँ चले गए? और अगर इतने लोग गृहविहीन है तुमको आर्थिक सर्वेक्षण में, तो फिर भारत सरकार द्वारा 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उस सर्वेक्षण से तू अपने सर्वेक्षण के आंकड़े को मिला के देखो, क्योंकि तब भी तो तुम्हारी सरकार थी बिहार में। भारत सरकार सर्वेक्षण करा रही थी लेकिन करने में तो बिहार सरकार के ही अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और उस सरकार में लालू प्रसाद यादव थे सहयोग में, समर्थन में, प्रशंसक में। इतनी बात समझिए जो कबीर दास जी ने कहा कि अपना तन का मरम न जाने मानुख मन बुराना है, जिनके पास में न कोई नीति है न जिनकी नियत है। तो बिना नीति और बिना नियत साफ वाले लोग आज राजनीति में है, संजोग है। देश का सौभाग्य हो दुर्भाग्य हो जो कुछ भी हो, किसी कारण से हो, कोई जाति के नाम पर हो, कोई वंश के नाम पर हो।
आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि इतने साल तक इनकी इतनी सरकार में रहे, मतलब सेंटर में भी बहुत चलती थी मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मिली हुई थी, तो इतने 30 साल में ये क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर जी को इतना ये बड़ा सम्मान दिलवा पाए? इसका क्या कारण है? क्या चाहते नहीं थे, क्या उनकी राजनीतिक जो विचारधारा है उसमें वो फिट नहीं होते थे, या क्या दिक्कत थी?
देखते हैं, एक है किसी के नाम का उपयोग करना, और उसी जो लोग जमात में थे उसी जमात में कर्पूरी ठाकुर जी के जो बड़ा बेटा है रामनाथ वो भी उसी में था, सम्मिलित उसी में, और वो में बहस में भाषण दे रहे थे कि नीतीश कुमार के प्रयास से हुआ है। तब बताइए, जिस महापुरुष का बेटा ही स्वयं सत्य नहीं बोल रहा है तो दुनिया से क्या उम्मीद करें। हालांकि उनका बड़ा छोटा बेटा है वीरेंद्र, डॉक्टर था, जिसकी चर्चा अमित जी ने किया था, हाँ उसी के हार्ट का इलाज था, जो उस समय हिंदुस्तान में वो इलाज नहीं होता था तो स्विट्जरलैंड जाना था, पैसा लगता रहा, वो लग रहा था उस समय कुल साथ जाके इलाज कुल खर्चा 40-42 हज़ार नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण दीदी है, बाकी हम लोग थे, हम साथी लोग थे, हम लोगों से उस समय जितना बन पड़ा सो हम लोग कुछ मांग चांग करके साथियों ने कोई उस समय भी 10-5 हज़ार रुपया कर्पूरी जी को दिया, लेकिन प्रचार नहीं करते थे लोग। फिर वो MBBS डॉक्टर बना और रिटायर कर गया, उससे पूछने गया, उसने कहा कि नहीं इसके लिए संपूर्ण रूप से अगर कोई है धन्यवाद के पात्र, अभिनंदन के पात्र, तो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो राजनीति से दूर है। तो राजनीति से दूर है तो क्यों किसी की चमचागिरी करेगा। आर्य कर्पूरी जी का बेटा है बड़ा, वो नीतीश के कृपा से मंत्री बना और यहाँ राज्यसभा में दो बार आया, तो मंच पर कह रहा था ये नीतीश जी के ही प्रयास का फल है और इन्हीं के प्रयास के कारण ही हुआ है। मैं किसी की न आलोचना करता हूँ न निंदा करता हूँ, मैं केवल उस मानवीय जो कमजोरी है मनुष्य को उसकी बात कर रहा हूँ, मानवीय कमजोरी। सच को सच कहो ना, तो एक ही बात इतना है कर के प्रधानमंत्री हैं निर्णय करने वाले, एक हैं केवल दिखा करके लुभाने वाले।
अच्छा ये देखिए कि जब कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हुआ उसके बाद लगभग 8 या 9 प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने राज चलाया, तो ये आपको क्यों लगता है कि मोदी जी के ही उसमें दिमाग में ये आया कि कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न के हकदार हैं?
आप मेरे फ्लैट से निकलिए और रास्ते में जाकर के सड़क के किनारे किसी गरीबनी माँ के बेटा को अगर तड़पते देखिए तो आप अपना खाना लेकर के जो खा रहे हैं वो उसके आगे दे दीजिए, और अपना कपड़ा उतार करके उसको दे दीजिए या कुछ पैसे दे दीजिए, तो कोई प्रश्न पूछे इसी रास्ते से तो इतने राही गए थे, किसी ने उसको क्यों नहीं देखा। यही है कि जाने वाले सबने देखा लेकिन उस बच्चे के प्रति उनके मन में ममता नहीं थी। क्यों नहीं ममता थी? कि उसने जाने वाले लोगों के मन में ममता नहीं थी, इसलिए कि उन लोगों ने वैसी स्थिति को जीवन में न देखा न भोगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी उस स्थिति को जीवन में भोगा, देखा, और उसी उपेक्षा और अपमान की जिंदगी में बढ़ के आगे आया उसी में से। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं का दुख जाने दुखिया माए जाके पर न फटे बीमाई, सो का जाने पीर पर आई। किसी ने उसको देखा नहीं, होगा नहीं। नरेंद्र मोदी उसी परिवेश में आए नरेंद्र मोदी निकल करके, जिस परिवेश में कर्पूरी ठाकुर जन्मे थे, पले थे, बढ़े थे, नरेंद्र मोदी उसी परिवेश में जन्मे, पले और बढ़े, इसीलिए उनके मन में कर्पूरी ठाकुर के लिए करुणा, मैं दया नहीं कहता हूँ, करुणा। तो उनके मन में कर्पूरी ठाकुर के प्रति करुणा का भाव आया कि ये आदमी, यह आदमी, इसकी पूजा क्यों नहीं हुई, तो ये करुणा की चीज है ना। तो नरेंद्र मोदी के हृदय में न मैं कहूँगा दया है, लोभ सब जाने दीजिए, गरीबों के प्रति जो कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे एक ही शब्द है, करुणा और ममता। जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि समता के लिए अपने हृदय में माँ वाली ममता चाहिए। ममता तो एक शब्द है, लेकिन माँ वाली ममता क्या है वो तो माँ ही बताएगी, दूसरा नहीं बता सकता है।
आपने कितने सालों तक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम भी किया, उनके सानिध्य में रहे भी, उनके साथ राजनीति की, कुछ बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जी के जो कंट्रीब्यूशन है, जो समाज के लिए, बिहार समाज के लिए भी और भारत के समाज के लिए भी, क्या आपको उस समय जब आप काम कर रहे थे उनके साथ, आपको क्या अलग लगता था और नेताओं के और लीडर्स के को कंपेयर करें तो क्या अलग था उनमें?
बहुत संपन्न परिवार तो नहीं, लेकिन मैं एक खाता पीता सुखी परिवार का था, किसान। अलग बात है कि हमारे यहाँ बाढ़ के कारण जमीन बाढ़ में डूब जाए तो कुछ फसल नहीं हो, तो जमीन थी हमारे पिताजी के पास में भी, 60-70 एकड़ जमीन थी, जमीन के मालिक थे, लेकिन वो जमीन रहे या न रहे बात बराबर। आज हमारे गांव में, आज हम मेरे गांव में, मेरे खेत में एक एकड़ में जितना पैदावार करते हैं उतना मुझे 60-70 एकड़ में भी नहीं कभी कभी होता था। हम 60 में ग्राम पंचायत के प्रधान बने जब बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे। समाजवादी युव जनसभा के लोग से कॉलेज में हमारी मुलाकात हुई और रोज संघ के शाखा में भी जाते थे। दोनों का मेरा साथ चलता था, कोई किसी में रोक नहीं। उस समाजवादी युव जनसभा वाले से मेरा परिचय हुआ, वो भी एक घटना है कि मेरे कॉलेज में एक राजनीतिक डिबेट रखा गया था उसे पुरस्कार के लिए, जब मैं सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर में, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स विषय था मेरा, तो उसमें विषय था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्री विषय था। और मैं उसमें बोलने के लिए इस विषय के खिलाफ अगेंस्ट में गया कि नहीं गलत है, नहीं गलत है। तो मैंने अपने तर्कों से सिद्ध किया कि क्यों ये गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए ही आवश्यक है, और अंडर डेवलप्ड कंट्री संपूर्ण रूप से डेवलप्ड होगा तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू ही होगा, डिक्टेटरशिप से नहीं हो सकता है। तो उस समय मैंने उदाहरण दिया था कि सहरसा जिला जब यूनाइटेड था, सहरसा मधेपुरा सुपौल, तो उस समय संसद के लिए एक जीत के आए थे किराई मुसहर, क्योंकि बोलने वाले ने जिक्र किया था कि किराई मुसहर जैसे अनपढ़ आदमी चले जाते हैं। तो किराई मुसहर जी लोकसभा में आ गए, उनको दिल्ली में अकेले आ नहीं सकते थे, तो भूपेन बाबू उसको दिल्ली तक ले आए, फ्लैट मिला, उस फ्लैट में रहता था तो डरता था, गांव का आदमी बेचारे जमीन पर सोने वाला, झोपड़ी वाला। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसी एरिया से एक रामजी सदा, दोनों मुसहर, में कहता हूँ जिसको कहते हैं महादलित, ये नीतीश ने निकाला महादलित मुसहर, जिसके जीतन राम मांझी हैं, तो रामजी सदा बने, वो भी वैसे। तो बिहार में बड़े लोग मीटिंग में कहते थे देखो कैसा देश बन गया कि किराए मुसहर जैसा अनपढ़ चला गया पार्लियामेंट में, रामजी सदा जैसा अनपढ़ आ गया विधानसभा में, इसी से देश चलेगा। और दूसरे तरफ कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जो समाजवादी लोग सब थे जितने, उस समय दो जगह प्रजा समाजवादी दल और सोशलिस्ट पार्टी, लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी और एक असली प्रजा समाजवादी दल। प्रजा समाजवादी दल पहले वही थे, उस बाकी मुस्लिम निकले थे, किसी कारण से लोहिया अलग हो गए, अलग कर दिया गया। तो उसी में मैंने उसमें प्रश्न को रखा कि भारत के इस लोकतंत्र का जो सूर्योदय हुआ वो रामजी सदा और किराय मुसहर जी के जीतने से ही भारत के लोकतंत्र का ये प्रथम किरण प्रस्फुटित हुआ है। अब मैंने फिर सिद्ध किया, मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार को भी चाहिए कि ऐसे खोजे, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी निकाले। तो उसी परंपरा से पाए, फिर 67 में जब पार्लियामेंट का ये चुनाव हुआ था, असेंबली पार्लियामेंट का साथी था, तो दरभंगा के बहेड़ी से एक केदार पासवान जी हुए, वो चौकीदार थे, केदार पासवान दस्तखत करते थे किसी तरह, तीसरी चौथी पास रहे होंगे, वो सोशलिस्ट पार्टी से लड़े थे गाज साफर, तो मैं भी लड़ रहा था, मैं जीता था असेंबली में। दादर वो रोसरा सुरक्षित सीट से केदार पासवान जीते, वो चौकीदार थे। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जो समाजवादी जो लोग थे, उसमें जो ऐसे लोग थे, ऐसे लोग जो एक साथ बढ़े निकले, जिन्होंने आर्थिक सामाजिक दोनों तरह के पीड़ा को झेला, सामाजिक अपमान को भी झेला और पेट के भूख को भी झेला। डॉक्टर लोहिया ने यही कहा कि इस दोनों विषमता जो है इसको मिटाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। पेट की भूख मिटेगी रोटी से और मन की भूख मिटेगी सम्मान से। तो समाज के अंदर जो ये दोनों तरह के भूखे हैं, जो पेट के भी भूखे हैं और मन के भी भूखे हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दो। जो केवल पेट के भूखे हैं, मन के भूखे नहीं है, वो दूसरे नंबर पर है। ऐसे समझिए जो ऊंची जाति के लोग हैं गरीब, वो पेट के भूखे हैं लेकिन मन के भूखे नहीं हैं, कि गरीबी में भी उनके मन में एक ये बैठा है कि मैं ऊंची जात का हूं। और एक तरह के लोग हैं जिनको पेट की भी भूख है, मन का भी, पेट की भूख है और मन से भी वो है कि नहीं मैं छोटी जात का हूं, मैं शूद्र हूं, मिथिलांचल के हिसाब से हम सोलकन हैं, हम बहिया हैं। ये जो हीन भावना है, कर्पूरी ठाकुर जी उसी परंपरा के अंदर उसमें कोई मन से हीन भाव को हटा के और पेट के अंदर रोटी पहुंचा के दोनों साथ था। पेट में रोटी दो और मन की मजबूती दो। बहुत कठिन है, लंबा दर्शन है, हम लोग उसी राह के राही थे। कर्पूरी ठाकुर जी का रास्ता पसंद था, समाजवादी युव जन सभा वाले को लगा कि ये नौजवान तो असली हमारे काम का है। फिर वो आए संपर्क में, इंद्रकांत झा थे, वो साथ पढ़ते थे, उनसे मिलजुल करके फिर हम सोशलिस्ट पार्टी के मीटिंग में गए, कर्पूरी जी मिले, सूरज बाबू मिले, फिर मुझको उनका भाषण सुने, हम कह के चलो अब मुझको ठीक लगता है, बस चले गए कर्पूरी ठाकुर के साथ निकल पड़े।
एक ये बोला जाता है, पता नहीं कितना सच है, कि जब उप मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, तो वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए थे, तो लोहिया जी ने मना कर दिया था क्योंकि वो खुश नहीं थे जिस तरीके से सरकार जो चल रही थी बिहार में और भी राज्यों में, जो वो चाहते थे, जैसे दो तीन उनकी डिमांड्स थी, उसकी वजह से वो खुश नहीं थे क्योंकि वो पूरी नहीं हो पा रही थी। एक शायद जमीन के से जुड़ा था, एक अंग्रेजी का था, तो ये दो तीन चीज़ें जो थी। पर कर्पूरी ठाकुर जी समझ गए कि ये मिलना नहीं चाहते, मतलब नाराज़ हैं, नाराज़ हैं। तो वो नाराज़गी का कारण जो है वो फिर वो बिहार गए, तब उन्होंने वो दोनों कामों पर काम किया और फिर वो मैट्रिक से जो अंग्रेजी की पढ़ाई की जो होती थी वो भी हटाई और हिंदी को लागू किया। तो ये भी एक इंसिडेंट है, पता नहीं कितना सच है।
वो बहुत देर तक बैठे रह गए बाहर, लोहिया ने लोहिया मिलने से इनकार कर दिया। तो लोहिया के जो सहयोगी थे जो उनको सेवा भक्त में, तो उनको लोहिया ने कहा कि कर्पूरी है कि गया, तो बैठे हैं, तो कहो कहो जाने के लिए, मैं नहीं मिलूँगा। तब आए तो उस समय वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ दो विभाग था, शिक्षा और वित्त। तो उन्होंने शिक्षा में हाई स्कूल तक की पढ़ाई को जो ये फीस लगता था
आठवीं तक की,
हाँ मिडिल स्कूल तक, तो उसको उन्होंने आठवीं नहीं तब मिडिल था, तो मिडिल क्लास तक के लड़के की पढ़ाई को मुफ्त किया और मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया कि अंग्रेजी की पढ़ाई होगी लेकिन परीक्षा में अंग्रेजी का जो नंबर है वो जोड़ा नहीं जाएगा, उसमें फेल हो या पास हो इससे कोई मतलब नहीं, सभी विषय में पास है, अंग्रेजी में फेल है तब भी वो पास माना जाएगा मैट्रिक पास। और दूसरा अलाभकर जोत पर से मालगुजारी को ख़त्म किया। अलाभकर जोत माने 5 एकड़ जमीन को, समाजवादी लोग नारा लगा कहते थे कि 5 एकड़ तक का जोत अलाभकर है, तो हम लोग कहते थे बिना नफा की खेती बाड़ी उस पर लगे न मालगुजारी, जिस खेती से लाभ नहीं उस पर लगे लगान नहीं। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, गांधी लोहिया की अभिलाषा चले देश में देसी भाषा। तो कर्पूरी ठाकुर ने इस दोनों नारा को कानून बना के लागू किया और तब आए तो उसने जाकर कहा लोहिया जी को कि कर्पूरी जी आए हैं, तो खुद आए उठ करके कर्पूरी जी को पकड़ के गले लगाए, कहे कर्पूरी अब तुम कुछ करके आए हो। और भी छोटे थे हमारे यहाँ नदियाँ काफ़ी थी, उस पर घाट पर खेवा लगता था, उन्होंने गरीब तंग करते थे उसको माफ़ कर दिया, कहा किसी जगह वो सरकारी नाव रहेंगे उसी से पार पार होंगे, कोई गरीब को उस पर टैक्स नहीं लगेगा, खेवा नहीं लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे काम थे सामान्य गरीब के लाभ के लिए उन्होंने किया। फिर आगे जब आए तो 26% जो आरक्षण दिया 77 में, तो उसमें भी गरीबी है क्योंकि उन्होंने 26% में 12% दिया अति पिछड़ा, जिसको अभी नीतीश सब कहते हैं अति पिछड़ा, वो है एनेक्सर 1। मुंगेरीलाल कमीशन के मुताबिक पिछड़ा में 2 है, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 माने निर्बल पिछड़ा, एलेक्सर 2 माने सबल पिछड़ा, सबल में जादव कोजी कुर्मी जुकू है। तो कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण दिए तो 26 में 12% निर्बल पिछड़ा, 8% सबल पिछड़ा, 3% समाज के सभी महिला को और 3% अन्य वर्ग के निर्धन को, गरीब को, आर्थिक पिछड़ा। और फिर उसमें गरीब थे तो उन्होंने कहा ये लागू तो कर दिए लेकिन इसमें भी जो इस वर्ग में भी जो ताकतवर होगा वो लूट न ले, तो इसीलिए ने अर्थ का आधार उन्होंने एक ही लगा दिया था कि इनकम टैक्स देने वाले को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार का नोटिफिकेशन निकाल के देख ले लो, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात की फालतू बात, उसको तो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए था, कोई हर्जा नहीं था। बाद में सब कहा कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला बड़ी अति वैज्ञानिक है, तो उसने जो ये आरक्षण भी दिया तो उसमें उनकी दृष्टि थी पिछड़े वर्ग में आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन वो उसी को मिले जो पिछड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमजोर है, सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से कमजोर है। और ऊंची जात में से अन्य वर्ग को जो 3% मिले उसमें भी उसी को मिले जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है। तो एक मापदंड बना दिया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देने वाले हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और सारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने सब सम्मति से कर्पूरी ठाकुर को इस फॉर्मूला को स्वीकार किया था। कांग्रेस के भी सभी नेताओं ने स्वीकार किया था, पिछड़े वर्ग के सभी यदुवंशी नेताओं ने।
और वही फॉर्मूला कहीं ना कहीं आज भी चल ही रहा है, बस परसेंटेज थोड़ा अलग हो गया है।
चलिए अब एक है, देखो एक है दिल से समर्पण के भाव से काम करना, और एक है कि काम करना दिखावे के लिए करना, समर्पण नहीं है समर्पण। तो जो कर्पूरी ठाकुर हो या नरेंद्र मोदी हो कोई हो, वो जो काम करते हैं तो समर्पण, और बाकी लोगों ने किया वो दिखावे के लिए किया, नारा लगाने के लिए किया। और उनके साथ जो संपन्न थे पिछड़े और दलित में जो संपन्न थे, जो सीधे कहिए जो आरक्षण को लूट रहे थे, उन लोग उनके साथ मंच पर जाकर के उनका जय जयकार करते रहे। और बाकी ये अलग अलग ढकोसला करते रहे, ये गन्ना वो गन्ना। चलिए अब तो बड़े बड़े नेता है जिनके जिनके बाप दादा को राज चलाने का मौका लगा, तो उस समय वो तो उनके लिए कुछ किए नहीं, इसी हिंदुस्तान में तो एक जमाना था कांग्रेस के शासन में तो 80% राज्यों के मुख्यमंत्री सब ऊंची जात के थे, सभी ऊंची जात के थे, एक जात के लोग बेसी थे। इतिहास है निकाल के देखें, आज वैसी स्थिति नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई नहीं था पिछड़े वर्ग के, एगो बाबू जगजीवन राम थे और एकाध कोई और थे। बिहार में पहली बार दरोगा प्रसाद राय को राज्य मंत्री बनाया गया। मैं ये कह रहा हूँ आपको 54-55 की बात, 53-54 की। तो अखिल भारतीय यादव महासभा का सम्मेलन मधुबनी में हो रहा था, यादव महासभा ने पास किया, श्री बाबू का अभिनंदन किया कि उन्होंने पहली बार हमको एक राज्य मंत्री बनाया है। और आज भारत सरकार के मंत्रिमंडल में, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 4 यादव मंत्री हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 27-28 पिछड़ी जाति के दलित और अनुसूचित जाति छोड़ के 27-28 पिछड़ी जाति के लोग मंत्री हैं। जिसको कहिए कहिए कि ब्रांडेड, तो कुछ लोग जो बड़े लोग थे, उन बड़े लोगों ने जो ऐसे नेता गरीब के घर में आते थे उनको जातवादी नेता घोषित करते थे। चरण सिंह जाट के नेता, कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा के नेता, नरेंद्र मोदी ओबीसी, जगजीवन बाबू हर दलित के नेता, तमारे चौधरी चरण सिंह जाट के नेता, जगजीवन बाबू दलित के नेता, डॉक्टर अम्बेडकर दलित के नेता।
राष्ट्रीय नेता तो सिर्फ गांधी परिवार,
नहीं नहीं गांधी परिवार मत कहिए, नेहरू परिवार कहिए। राष्ट्रीय नेता का ट्रेडमार्क, होलसेल ट्रेडमार्क, सर्वाधिकार सुरक्षित, ये केवल एक नेहरू वंश को था, उनके दल में भी दूसरे को नहीं था। केवल
वो पैदा होते ही राष्ट्रीय नेता,
और नेहरू वंश नहीं, वो वंश नेहरू वंश का ट्रेडमार्क था, नेहरू वंश का ट्रेडमार्क था सर्वाधिकार सुरक्षित, जो किताब में पब्लिकेशन में रहता है ना
ट्रेडमार्क।
हाँ ट्रेडमार्क, तो नेहरू वंश का ट्रेडमार्क था सर्वाधिकार सुरक्षित, मतलब इस देश के सभी अधिकार इसी वंश के हाथ में सुरक्षित है। अब उनका काम है बांटना दया, और बाकी लोग दया के पात्र हैं। दया के पात्र हैं। अब चक्र उलट रहा है, जो समाजवादी लोहिया के, जिसको पढ़ना हो लोहिया के साहित्य को पढ़े, लोग नौजवान लोग पढ़े, बहुत मिलेगा। उस समय नेहरू के बारे में जो मंच पर से डॉक्टर लोहिया जब बोलते थे, तो उसके कारण जो ये वामपंथी या दूसरे कांग्रेस समर्थक कितनी गालियां देते थे, कौन कौन गाली नहीं देते थे उनको। पार्लियामेंट में निकाल के पढ़े ना, 63 से लेके और 67 में जो 12 अक्टूबर को उनका निधन हुआ है, 67 तक ये कांग्रेसी, खास करके इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी उस समय, उनके समय में तो 3 प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल थे, लाल बहादुर से इंदिरा गांधी तक, 3 प्रधानमंत्री को देखा। उसमें इंदिरा गांधी के समय में उनको कितनी गालियां दी जाती थी, तो लोहिया को गाली सुनना पड़ा, कर्पूरी को गाली सुनना पड़ रहा, चरण सिंह को सुनना पड़ा, सबको सुनना पड़ा, और वही आज नरेंद्र मोदी को भी सुनना पड़ रहा है। यही तो देश की विडंबना है, एक वर्ग रहा गाली देने वाले का, एक वर्ग रहा गाली सुन के भी, अपमान सह के भी, धैर्य के साथ इस समाज की और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला। उसमें दीनदयाल जी भी थे, उसमें दीनदयाल जी भी थे और भी थे, बिहार में रामानंद तिवारी थे, कपिल देव सिंह थे, ऊंची जाति वाले भी थे, ये नहीं कि केवल पिछड़े थे, ऊंची जाति के भी बहुत थे जो इस आंदोलन में इन पिछड़ों को कंधा पर उठा के आगे लेके चल रहे थे, वो खाद बन रहे थे। लोहिया ने कहा था कि ऊंची जाति के लोग जिस दिन खाद बनना सीख लेंगे, उस दिन भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। तो कहते थे खाद बनने वाले थे, यही है, बहुत लंबी कहानी है, चलिए जितना संक्षेप में करिएगा उतना है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ कहाँ, हम तो कर्पूरी ठाकुर को जब मिला तो साथ चलते थे, कहीं गांव में रुक जाते थे, जमीन पर गजराज जारा महीना में पुआल पर सो जाते थे, और पुआल का चटाई होता था गरीब सबका, उसी में सो जाते थे, उन्हीं के घर में खेसारी का साग भात रोटी जो मिले सो खा लेते थे। अब भोरे भोर गांव का लोग जो है उस मिथिलांचल में, हर गांव में कोई न कोई सवेर में जारा महीना में प्राती गाता था, कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख ही गमावल दुख ही बितावल, दुख ही गमावल दुख ही बितावल, सुख सपनऊ नहीं भेल हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावल, सुख सपनऊ नहीं भेल हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। ये जन जन की आवाज थी। और आज वही अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब विकास की धारा चली, तो आज उसी मिथिलांचल के लोगों के मिट्टी पर अब ये पराती गाने वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, पूरी संपन्नता नहीं आई है, लेकिन मात्रा भेद, तब जो नेहरू राज कांग्रेस राज का था और आज का राज है, उतने में बहुत मात्रा भेद है। गति, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, गति शक्ति, मतलब गति में शक्ति, स्पीड। तो कांग्रेस के राज में गाड़ी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से चलती थी, अटल जी के समय में 40-50 किलोमीटर पर आया, नरेंद्र मोदी के समय में 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर चला गया। जिसको जितनी शक्ति मिली उसी हिसाब से गरीब के लिए करने वाले थे। तो गरीबों के जीवन गरीबों के समग्र विकास के लिए जो योजना की गाड़ी थी, उस गाड़ी की गति कांग्रेस में 5-10 किलोमीटर थी, अटल जी ने उसको बढ़ा के 40-50 पर लाया, नरेंद्र मोदी अब उसको 70-80 पर ले गए, और नरेंद्र मोदी अब इसमें है कि विदाउट ब्रेक तुम्हारी गाड़ी बनेगी। अब इससे तो कुछ लोग हैं उनको तो कलेजा जलेगा,
5-10 वाले स्पीड वालों
जलेगा, जब निर्धन निर्बल गरीब आदिवासी पिछड़े दलित के घर के लोग अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, किसी दिन भगवान करे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए, उस जुडिशियरी में भी उनके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज में भी 10-20-25 इसी तरह के लोग आ जाएं। ये कार्यपालिका है जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेके नहीं संपूर्ण, इसमें भी वो आ जाए, वो आ जाए। उस दिन भारत के भाग्य का प्रखर सूर्योदय होगा। देखिए, ईश्वर की इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना। अब अयोध्या में राम भी आ गए हैं, तो कुछ उनकी भी ताकत धरती पर आ गई है। अब ईश्वरीय शक्ति और लोक शक्ति, राम की ईश्वरीय शक्ति और नरेंद्र मोदी की लोक शक्ति, अब दोनों शक्ति का समन्वय हो रहा है भारत में।
अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में दो बात जो बोलते हैं लोग अलग अलग, उनमें एक तो ये बोलते हैं कि जो उनकी सामाजिक नीतियाँ थी, सामाजिक न्याय के लिए, जो जैसे रिजर्वेशन की आपने बात की, उसमें न्याय की बात थी लेकिन कटुता नहीं थी किसी के प्रति, जो बाद में इस सामाजिक पार्टियों में, समाजवाद वालों में कहीं ना कहीं दिखती हैं। आप लालू जी का राज ले लीजिए या और लोगों का ले लीजिए। दूसरा एक तबका ये भी है जो कहता है कि ये तो बिहार के पेरियार उनको घोषित करते हैं, तो इनके दोनों गलत। हाँ जी, दोनों के ऊपर आप
गलत। पेरियार की धारा अलग है, कर्पूरी ठाकुर की धारा जाति विरोधी धारा नहीं है। पेरियार की धारा केवल एक धारा है, वह है ब्राह्मण विरोध। कर्पूरी ठाकुर और लोहिया की धारा है, वह है समरस समाज। दीनदयाल की धारा है समरस समाज कि संपूर्ण समाज को, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अलग अलग समय के हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अपने ढंग से कहा, लोहिया ने अपने ढंग से कहा, लेकिन लक्ष्य वही था, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सभी क्षेत्रों में समानता होनी चाहिए, समानता, बराबरी। अब उसमें बराबरी पूर्ण नहीं होगी, संभव बराबरी, जितना तक हो सके कोशिश करेंगे। तो उसमें सब साथ थे, उस समय भी हम लोग भी थे, तो उस समय में जो कट्टरपंथी जो थे जातवादी, वो हम लोगों के विरोधी थे, खूब मंच पर गाली देते थे। लेकिन ऊंची जाति के अंदर में जो दो धारा थी, एक है कट्टरपंथी धारा, एक है उदारवादी धारा, तो ऊंची जाति के अंदर जो उदारवादी लोग थे, वो इन पिछड़े और दलित समाज के जो नेता निकलते थे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, आगे बढ़ाने का, कि अपने पीछे रहो, इसको आगे बढ़ाओ। एक धारा थी ऊंची जात की, पिछड़ों और दलितों के कंधे पर चढ़ के नेता बनो, और एक उस ऊंची जाति में धारा थी जो कहते थे कि अपने पिछड़े और दलितों को अपने कंधे पर चढ़ा करके इसको नेता बनाओ। देखिए, दोनों में फर्क है। हम लोग बने हैं ऊंची जाति के लोगों के कंधे पर चढ़ के नेता बने हैं, उन्होंने कंधे पर चढ़ा के बनाया, उनके प्रति आभारी हैं। और एक है जो कहते नहीं, पिछड़े दलित के कंधे पर चढ़ के नेता बनो, और कहो कि इनका सौभाग्य है जो हम इनके कंधे पर बैठे हुए हैं, है ना। और एक उधर ऊंची जाति के लोग थे जो कहते थे ये मेरा नहीं, ये राष्ट्र का सौभाग्य है कि हमारे कंधे पर ये पिछड़े और दलित के नेता आगे बढ़ रहे हैं। वो दधीची की धारा है, वो दधीची की धारा है, उदारता की धारा है, एक तरफ स्वार्थ की धारा है। तो ये दो द्वंद्व टकराव होते आया नरेंद्र मोदी जी के समय में। जो उदारता वाली धारा है, इस धारा में गति आई है, प्रबल धारा के गति में तीव्रता आई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हृदय में समर्पण है। किसके लिए? राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए। एक है जो समर्पण भाव से करता है, और एक है जो समर्पण का छल करता है।
तो बिहार पे बात हुई कि बिहार का क्या स्थिति है, तो उस पे आप कह रहे थे कुछ कि जो सामान्य दिख रहा है वो वैसा है नहीं, तो इससे आपका क्या तात्पर्य है, कुछ समझाना चाहेंगे?
जो सामान्यतः दिख रहा है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन जो कबीर दास जी ने कहा कि शून्य शहर तक सब गया, आगे का गम नाही, जो आगे का गम करे वो मंद मंद मुस्काए। या हमारी सारी हमारे जो दर्शन है वो शून्य पर रुकता है। कर्पूर ये कबीर दास जी कहते हो शून्य के पार भी है, और शून्य के पार क्या है तो कबीर दास जी स्वयं कहते हैं, जो आगे का गम करे वो मंद मंद मुस्काए। जो आगे को देखता है वो कह ही नहीं सकता है, केवल मुस्कुराता है, आनंद विभोर हो जाता है। उसी तरह सामान्य लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। मैंने जो कहा परिस्थिति विशेष है, भारत की परिस्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य नहीं है, विशेष है। दो असामान्य में और विशेष में फर्क है। तो भारत की परिस्थिति अभी सामान्य नहीं है, भारत की परिस्थिति अभी विशेष है। अब विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, भारत के विशेष परिस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है। अयोध्या में राम की मंदिर की स्थापना कोई सामान्य परिस्थिति है? विशेष परिस्थिति है। उस राम के साथ जो उनके जितने जो ये वनवासी गिरिवासी लोग जितने थे उनको भी उनके साथ स्थापित किया गया है, ये विशेष परिस्थिति है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है, ये विशेष परिस्थिति है। और समाज ने खुशी है भारत का कि उसको सकल समाज ने प्रसन्न चित्त से स्वीकार किया है कि नहीं होना चाहिए, यही यही भारत है, होना चाहिए, आनंदित है। और उसी का रूप जब यहाँ राजनीति का भी उसी रूप, जब वही रूप जब 24 में आएगा तब देखिएगा कि भारत कितना आनंद विभोर होगा। मैं भारत की उस आनंद विभोर भारत जो नृत्य करेगा 24 के चुनाव के बाद, मैं उस आनंद विभोर नृत्य करते हुए भारत को देख रहा हूँ। बस अभी अपने अपने देखने की बात है, मैं क्यों देख रहा हूँ? तो मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझको अब दिखाई पड़ रहा है तो मैं क्या करूँ?
बियॉन्ड पॉलिटिक्स
क्या करूँ? मैंने कहा ना पार, जैसे हम गांव में हैं तो हम कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो 2024 में श्री राम की लीला अपरंपार। ये भारत का 2024 भारत के पूर्ण जागरण का समय है। अब किस रूप में होगा, कैसे होगा,
लेकिन पुनर्जागरण पूरी तरह से होना ही है,
निश्चित है।
चलिए इस सकारात्मक भाव के साथ इसकी समाप्ति करते हैं।
एक है भारत रत्न, और अब आने वाले हैं देश में लोक रत्न, जैसे वाल्मीकि हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, अंगद है, नल है, नील है, केवट है, निषाद है, सबरी माता है, ये सब हैं लोक रत्न। तो भारत के अंदर अब लोक रत्न आने वाले हैं, गिरी में से, भार में से, जंगल में से, खेत से, खलिहान से, कारखाने से, हथौड़ा के चोट से, मछुआरों के जाल से, जो विवेकानंद ने कहा था, ऐसे संपूर्ण भारत भर से अनेक लोक रत्न निकलने वाले हैं। और उन लोक रत्नों के बीच में जब कोई भारत रत्न बैठेगा तो वैसे ही लगेगा जैसे चमकते नक्षत्रों के बीच में सूर्य विराजमान हो, वो भारत आ रहा है।
हुकुमदेव जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञानवर्धन होता है। तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भारत के रत्न हैं जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन पे हम कभी बात करेंगे। तो इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।